ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार और प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच चुनाव का वातावरण बनाने की हुई समझदारी। फागुन 21 गते के लिए निर्धारित प्रतिनिधि सभा चुनाव को सफल बनाने का राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री सहित प्रमुख तीन दलों के शीर्ष नेताओं से किया आग्रह। मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के भी तराई क्षेत्र में शीतलहर के कारण जनजीवन है प्रभावित। काठमांडू महानगर क्षेत्र में अनुमति प्राप्त करके भी भौतिक रूप में संचालन में न रहे 107 विद्यालयों के प्रतिनिधियों को 15 दिनों के अंदर संपर्क में आने का महानगर पालिका ने किया है निर्देश। और रूस ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में किया भीषण हमला। अब समाचार विस्तार से। सरकार और प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच आगामी फागुन 21 गते के लिए निर्धारित प्रतिनिधि सभा चुनाव को संपन्न करने का वातावरण बनाने की समझदारी हुई है। आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की सहित नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी के संयोजक पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड के बीच विचार विमर्श हुआ था। विचार विमर्श में उनके बीच चुनाव को सम्पन्न करने का वातावरण बनाने की समझदारी हुई। ये जानकारी राष्ट्रपति के प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल ने दी। साथ ही चुनाव का माहौल बनाने संबंध में विस्तृत विमर्श बालवाटार में करने की सहमति भी हुई है। मौके पर राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि मौजूदा गंभीर और संवेदनशील परिस्थिति से देश को निकास देने के लिए घोषित चुनाव को सफल बनाना सभी का दायित्व है। उन्होंने प्रधानमंत्री सहित मुख्य तीन दलों के शीर्ष नेताओं से चुनाव को सफल बनाने का आग्रह किया। कानून समेत विभिन्न मंत्रालय संभाल रहे मंत्री अनिल कुमार सिन्हा, संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री और प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार अजय भद्र खनाल सहित की टोली ने नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले के क्षतिग्रस्त पार्टी मुख्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मंत्री सिन्हा ने कहा कि देश को राजनीतिक निकास देने के लिए सभी राजनीतिक दलों को जुटना होगा। नेपाली कांग्रेस ने कल बुधवार को केन्द्रीय कार्य संपादन समिति की बैठक बुलाई है। पार्टी मुख्यालय सानेपा में कल दोपहर 1 बजे बुलाई गई बैठक में इसी पूछ 26 गते से 29 गते तक के लिए तय 15वें महाधिवेशन, आगामी मार्ग 11 गते को होने वाले राष्ट्रीय सभा चुनाव, आगामी फागुन 21 गते के लिए निर्धारित प्रतिनिधि सभा चुनाव लगाये समसामयिक विषय में विचार विमर्श होगा। ये जानकारी कांग्रेस ने दी। गौरतलब है कि महाधिवेशन की तैयारी के लिए निर्धारित समय को अपर्याप्त बताते हुए महाधिवेशन की तिथि में परिवर्तन की चल रही चर्चा के मौजूदा हाल में कार्य संपादन समिति की बैठक बुलाई गई थी। ठंड बढ़ने के बाद तराई में शुरू हो चुके शीतलहर के कारण यहां का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित बना हुआ है। मध्य प्रदेश के साथ ही अन्य प्रदेशों के भी तराई क्षेत्र में शीतलहर के कारण दैनिक जीवन में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच बांके में नागरिकों को ठंड से बचाने के लिए आपदा पूर्व प्रतिकार्य योजना को क्रियान्वयन में ला गया है। ये जानकारी जिला आपदा व्यवस्थापन समिति ने दी। काठमांडू महानगर पालिका के शिक्षा विभाग ने 107 स्कूलों को संपर्क में आने की जानकारी सार्वजनिक की है। महानगर क्षेत्र के भीतर 107 स्कूल भौतिक रूप से संचालन में न पाए जाने के बाद ये संपर्क स्थापित करने की सूचना सार्वजनिक की गई है। महानगर पालिका की नगर शिक्षा समिति के पिछले श्रावण 28 गते के निर्णय के अनुसार इन स्कूलों ने अतीत में अनुमति प्राप्त कर ली थी, लेकिन वर्तमान में उन्हें स्थलगत रूप से संचालित नहीं पाया गया है। ये जानकारी सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित है। स्थलगत रूप से संचालन में न पाए गए स्कूलों को 15 दिनों के भीतर शिक्षा विभाग से संपर्क करने का निर्देश महानगर ने दिया है। महानगर ने यह भी बताया है कि अनुमति प्राप्त करने के बाद भी वर्तमान में स्थलगत रूप में संचालन में न पाए गए इन स्कूलों की अनुमति रद्द करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। सार्वजनिक सेवा प्रसारण के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर महेन्द्र विष्ट ने कहा कि नागरिकों को प्राथमिकता देते हुए नागरिकों की रुचि और सत्य तथ्यपरक सामग्री का उत्पादन और प्रसारण करना सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल की मुख्य जिम्मेदारी है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के सम्मान में आज रेडियो नेपाल में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष डॉ विष्ट ने कहा कि चूंकि रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन सार्वजनिक सेवा प्रसारण के रूप में एक ही छतरी के नीचे आ गए हैं, इसलिए अब अतीत के अनुभवों और समय के अनुरूप दी जाने वाली नवीनता को केन्द्र में रखकर काम करने के लिए संबंधित सभी से आग्रह किया। कार्यक्रम में सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के प्रमुख प्रशासक की अधिकृत विष्णु राम न्योपाने ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अनुभवों से सीखकर आने वाले दिनों में संस्था की प्रगति के लिए सभी को काम करना चाहिए। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नियमित रूप से हाल के दिनों में बाजार निगरानी करते हुए 3 फर्मों के विरुद्ध जुर्माने सहित कार्रवाई की है। विभाग ने बताया कि इन फर्मों के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण एन 2075 की धारा 38 के तहत किए गए अपराध के लिए उसी एन की धारा 39(1) के तहत नकद जुर्माने के साथ कार्रवाई की गई है। नेपाल चीन उत्तरी कोरला नाका पूर्ण रूप से संचालन में आने के बाद पिछले 2 वर्षों से ऊपरी मुस्तांग के स्थानीय निवासियों ने रोजगार प्राप्त किया है। कोरला नाका के नेपाल पक्ष में स्थित 10 गजा क्षेत्र और कोरला के चीनी पक्ष में स्थित लीजी बाजार में ऊपरी मुस्तांग के स्थानीय निवासी व्यापार व्यवसाय संचालित कर रहे हैं। विक्रम संवत 2080 कार्तिक 27 गति से कोरला नाका खोले जाने के बाद युवाओं ने दैनिक 5,000 से 10,000 रूपये तक की आमदनी अर्जित करने में सफलता प्राप्त की है। पोर्चुगल और रोमानिया भेजने का वादा कर 10,50,000 रूपये की ठगी के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर आज साझा किया है। ठगी के आरोप में तनहुल जिले के भीमात गांव पालिका 5 के रोबीन जीआर और ओखलडुंगा जिले की सिद्धिचरण नगर पालिका 6 की 48 वर्षीय गीता माया मगर को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी काठमांडू पत्रिका अपराध अनुसंधान कार्यालय के प्रवक्ता काजी कुमार आचार्य ने दी। आरोपी रोबीन ने पोर्चुगल भेजने का वादा कर 1 व्यक्ति से 2,10,000 रूपये और गीता माया ने रोमानिया भेजने का वादा कर 2 व्यक्तियों से 8,40,000 रूपये लिए थे, ये जानकारी पुलिस ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र ओडेसा पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों से बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और क्षेत्र के समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ओलेक्सी कुलेबा ने कहा है कि रूस इन क्षेत्र पर सुनियोजित हमले कर रहा है। पिछले हफ्ते उन्होंने चेतावनी दी थी कि युद्ध का फोकस शायद ओडेसा की ओर हो गया है। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बार बार हो रहे हमले यूक्रेन को समुद्री लॉजिस्टिक तक पहुंच से रोकने की रूस की कोशिश है। दिसंबर की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति वोलोदिमिर पुतिन ने काला सागर में रूस के सेंडो फ्लीट के टैंकरों पर ड्रोन हमलों के जवाब में यूक्रेन की समुद्र तक पहुंच को रोकने की धमकी दी थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार और प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच चुनाव का माहौल बनाने की हुई समझदारी। फागुन 21 गति के लिए निर्धारित प्रतिनिधि सभा चुनाव को सफल बनाने का राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री सहित प्रमुख 3 दलों के शीर्ष नेताओं से किया आग्रह। मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के भी तराई क्षेत्र में शीतलहर के कारण जनजीवन है प्रभावित। काठमांडू महानगर क्षेत्र में अनुमति प्राप्त करके भी भौतिक रूप में संचालन में न रहे 107 विद्यालयों के प्रतिनिधियों को 15 दिनों के अंदर संपर्क में आने का महानगर पालिका ने किया है निर्देश। और रूस ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में किया भीषण हमला। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।